हाँ पंडित जी करते हैं शुरू।
ठीक है, मंगलाचरण शुरू करते हैं।
हाँ
वंदितु सबसे दे ध्रुवम चल मनोभवम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुरु मृण मोषुद केवली भणिदम नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये समय सारजी परमागम ग्रंथ है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके तीसरा अध्याय जो कि पुण्य पाप अधिकार, पहला अध्याय तो जीव जीव अधिकार है, दूसरा जो ये अध्याय है अधिकार है उसमें कर्ता कर्म अधिकार है लिया है, और अब ये चल रहा है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप दोनों को बंध का कारण सिद्ध किया है और दोनों को हेय सिद्ध किया है। कल तक अपन ने 156 नंबर की जो गाथा पढ़ी थी उसमें स्पष्ट ये आया था कि भले विद्वान जन भूतार्थ को छोड़कर भले व्यवहार में वर्तन करें लेकिन कर्म नाश व्यवहार के अधीन नहीं है। जो परमार्थ में आश्रित होते हैं, परमार्थ का आश्रय लेते हैं, ऐसे संत ही कर्म का क्षय करते हैं। और इसकी टीका में अपन ने ये बात कही थी कि कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्न जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, यानी परमार्थ तो हो गया ज्ञान रूप, ज्ञान मोक्ष का हेतु है, लेकिन उससे अन्न, ज्ञान से अन्न क्या है, व्रत तप इत्यादि जो शुभ कर्म है वे ज्ञान स्वभाव से अन्न है, विज्ञायक से भी अन्न है, ज्ञान स्वभाव से अन्न है और जानन स्वभाव से भी अन्न है। इसलिए ज्ञान स्वभाव से अन्न जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं उस समस्त का यहाँ पर निषेध किया गया है, क्योंकि वह मोक्ष हेतु अन्न द्रव्य के स्वभाव वाला है, इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता। यानी वो जो शुभाशुभ कर्म है वो पुद्गल के स्वभाव वाला है, और पुद्गल के स्वभाव वाला होने से पुद्गल का भवन तो बनता है लेकिन पुद्गल से ज्ञान का भवन नहीं बनता है। इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता है, मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला है। वास्तव में मोक्ष का जो हेतु ज्ञान है वो ही एक द्रव्य का स्वभाव है, अखंड एक द्रव्य का स्वभाव ज्ञान मात्र है, और एक द्रव्य का स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन बनता है। ये ज्ञान का भवन जो है वो सम्यक दर्शन रूप भी है, ज्ञान का भवन है वो ज्ञान रूप भी है, और ज्ञान का भवन वो चार्त रूप भी है, और इन तीनों की एकता अभेद रत्नत्र रूप भी ज्ञान का ही भवन है, और इसलिए वह ज्ञान का भवन होना परनमना वो मोक्ष का मार्ग है, और मार्ग ही नहीं मंजिल भी जो प्राप्त होती है मोक्ष मिला वो भी ज्ञानमय है। इसलिए इस तरह से इन्होंने मोक्ष के कारण के रूप में जो कर्म है उनका निषेध किया और ज्ञान स्वभाव को ही मोक्ष का कारण के रूप में स्थापित किया। कल अपन ने ये भी पढ़ लिया था भावार्थ जो पंडित जयचंद जी साहब ने लिखा था, क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभाव ही होना चाहिए। वाह गजब, ये हेतु देखो कितना बढ़िया है, जिसका मोक्ष होता है तो उसका कारण भी वास्तव में मोक्ष के कारण के रूप में होना चाहिए। माने तो आत्म स्वभाव का मोक्ष होता है, और आत्मा का जब मोक्ष होता है तो आत्मा का स्वभाव ही उस मोक्ष का कारण हो सकता है, अन्य द्रव्य का स्वभाव मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। अन्य द्रव्य का परिणमन अन्य द्रव्य रूप है, और उस परिणमन में अगर पुद्गल का परिणमन है तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल की रचना करेगा, पुद्गल पर्याय का को खड़ा करेगा, उससे कहीं पुद्गल के परिणमन से मोक्ष दशा प्रकट हो जाए संभव नहीं। मोक्ष प्रकट होता है आत्मा को, इसलिए आत्मा का है ज्ञान, इसलिए ज्ञान का ही परिणमन मोक्ष का कारण है। अन्य द्रव्य का या पुण्य भाव या अन्य प्रकार के जो भाव हैं वे सब अन्य द्रव्य के भाव हैं, पुद्गल के भाव हैं, उनसे ज्ञान का भवन नहीं बनता, उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये बात आगे और भी उन्होंने कही, शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले, इसलिए उनके भवन से, भवन माने परिणमन से, परमार्थ आत्मा का भवन नहीं बनता, माने परमार्थ आत्मा का परिणमन कर्मों से नहीं होता, परमार्थ आत्मा का परिणमन ज्ञान से होता है। इसलिए परमार्थ आत्मा ज्ञानी रूप परिणमन करने की सामर्थ्य वाला है, कर्म रूप परिणमन की सामर्थ्य वाला नहीं है। और कर्मों में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वे ज्ञान रूप परिणम जाए और ज्ञान भवन को तैयार कर सकें, मोक्ष को कर सकें। इसलिए वे आत्मा के मोक्ष कारण नहीं है। कौन? जो शुभ कर्म हैं, पुद्गल स्वभाव वाले हैं, और पुद्गल स्वभाव वाले होने से वो पुद्गल का कार्य तो कर सकते हैं। आत्मा का कार्य जो मोक्ष है, वो आत्मा का कार्य पुद्गल नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, इसलिए शुभ कर्म भी मुक्ति का कारण नहीं। फिर आगे लिखा, ज्ञान स्वभावी आत्मा है उस, इसलिए उसके भवन से आत्मा का भवन बनता है। अर्थात आत्मा भी ज्ञान स्वभावी है, और आत्मा का जो परिणमन ज्ञान का परिणमन होता है, उससे ही आत्मा का परिणमन होता है, उससे ही आत्मा का भवन बनता है। और भवन कौन सा बनता है? जब आत्मा अखंड है, त्रिकाली है, एक है, अभेद है, तो उसका आश्रय लेने वाली जो ज्ञान परिणति है, वो ज्ञान परिणति में जो परिणमन होगा, वो अखंड एक का परिणमन अखंड ही रूप में होगा, स्वभाव के आश्रय का परिणमन स्वभाव रूप होगा, और वो मोक्ष दशा रूप ही होगा, बंद दशा रूप नहीं हो सकता। ये इतनी बात जयचंद पंडित जी ने कही थी और कहा था कि आत्मा के मोक्ष का कारण केवल वो ज्ञान होता है, और इस कारण से ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का हेतु है। यहां तक आए। अब जो चीज इन्होंने टीका में कही, अमृतचंद्राचार्य ने, वे उनकी ये एक आदत रही, उनकी एक कहना चाहिए शैली रही, कि वे पहले गद्य के द्वारा तो वस्तु को स्पष्ट करते और पद्य के द्वारा उसका रसास्वादन करते, और पद्य में रसास्वादन की जो क्षमता होती है वो गद्य में नहीं होती, और समझाने की क्षमता गद्य में जितनी होती है वो पद्य में हर कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए आनंद की अनुभूति करना है तो अमृत चंद्राचार्य की पद्य रचना देख लो, और आपको वस्तु का विश्लेषण समझना है तो उनकी टीका देख लो। टीकाओं में विश्लेषण है, और टीकाओं के विश्लेषण में जो आनंद है वो आनंद उनके श्लोकों में मिलता है। देखिए पढ़ते हैं, जो चीज अभी अपन ने टीका में पढ़ी इसको कलश रूप में कैसे भरते हैं, एक कलम अमृत चंद्राचार्य के पास है। देखो, वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सदा, एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतु तदेव तत्। बड़ी सरल संस्कृत लिखी है, संस्कृत में ये लिखा उन्होंने, ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम वृत्तम सदा। सदा ही ज्ञान स्वभाव से, यानी ज्ञान है एक ही द्रव्य स्वभाव वाला है, एक द्रव्य स्वभावत्वात्, वो एक द्रव्य स्वभावी है, माने ज्ञायक आत्मा भी और उसका ज्ञान भी, दोनों का स्वभाव एक ही है। एक द्रव्य स्वभावी होने से ज्ञानस्य स्वभावेन, ज्ञान के स्वभाव से सदा हमेशा ज्ञानस्य भवनम वृत्तम, ज्ञान का भवन बनता है। वृत्तम माने बनता है, और भवनम ज्ञान का भवन बनता है, और इसलिए तत् माने वो ही ज्ञान का भवन, तद एव मोक्ष हेतु, वो जो ज्ञान का परिणमन है वही मोक्ष का कारण है। राग का परिणमन मोक्ष का कारण नहीं है, शुभ रूप परिणमन मोक्ष का कारण नहीं है, शुभ बंध से मुक्ति नहीं होती है, शुभ परिणमन से मुक्ति नहीं होती है, और वास्तव में देखा जाए तो भगवान आत्मा स्वरूप परिणमत ही नहीं है, वो स्वरूप परिणमन पुद्गल का है, वो स्वरूप परिणमन कर्म का है, और वो कर्म के परिणमन को आत्मा जानता तो है लेकिन जानने वाले के रूप में नहीं हो जाता। कर्मों को जानता है आत्मा, इसका निषेध नहीं, लेकिन आत्मा कर्म रूप नहीं होता। ज्ञेयों को जानता है आत्मा, लेकिन ज्ञान ज्ञान ही रूप रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता है। इस तरह से ज्ञान ही एक द्रव्य स्वभाव का, एक द्रव्य स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से ही ज्ञान का भवन बनता है, और ज्ञान का भवन जहाँ बनता है वो उसी से मुक्ति होती है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ये पहला कलश हुआ। अब इसके विरोध में दूसरा कलश आएगा, उसमें ऊपर वाले में तो लिखा है एक द्रव्य स्वभावत्वात्, दूसरे वाले में लिखा है एक द्रव्य स्वभावत्वात् नहीं लिखा, 107 में लिखा द्रव्यांतर स्वभावत्वात्। देखिए पढ़ते हैं 107 नंबर का कलश, जिसमें ये लिखा है, वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं, कर्म स्वभाव शब्द डाला, ऊपर डाला था वृत्तम ज्ञान स्वभाव, यानी ज्ञान स्वभाव से जो परिणमन होता है वो परिणमन ज्ञान ही रूप होता है, और कर्म स्वभाव से जो परिणमन होता है वो द्रव्यांतर स्वभाव वाला परिणमन होने से उससे मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का भवन नहीं होता, और उससे कर्म का भवन भी नहीं बनता। तो यहाँ लिखा ना वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं, ऊपर तो लिखा था ज्ञानस्य भवनम सदा, और यहाँ लिख रहे हैं ज्ञान का भवन नहीं होता है काय के द्वारा, कर्म स्वभाव से। तो जो पुण्य है, पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है, ये शुभ कर्म है, कर्म होने के कारण उससे ज्ञान की रचना नहीं हो सकती, कर्म होने के कारण उसकी पुद्गल और जड़ कर्म ही की रचना कर सकता है, पुद्गल पुद्गल की रचना करता है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप होता है, चेतन का परिणमन चेतन रूप होता है, ज्ञायक का परिणमन ज्ञान रूप होता है, और ज्ञान रूप परिणमन भी श्रद्धा रूप भी रहता है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप भी रहता है, ज्ञान का परिणमन चारक रूप भी रहता है, और तीनों परिणमन रूप ज्ञान होने से ज्ञान में बेहतम से हेतु ज्ञान ही मोक्ष का हेतु कहा गया है। लेकिन कर्म स्वभाव जो है वो ज्ञान भवन को नहीं बना सकता, जब कर्म स्वभाव से ज्ञान भवन नहीं बन सकता तो वो कैसा है कर्म का स्वभाव, द्रव्यांतर स्वभावत्वात्, वो द्रव्यांतर स्वभाव होने से यानी अन्य द्रव्य का स्वभाव होने से मोक्ष हेतु न कर्म तत्, वह जो शुभ कर्म है वो मोक्ष का कारण नहीं। ये दूसरी गाथा है, दूसरा कलश है 107 में, उस कलश का और इन दोनों का एक साथ अर्थ पढ़ते हैं। एक 106 श्लोक का अर्थ तो ये है, ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी जीव स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से सदा ज्ञान का भवन बनता है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण। और 107 में क्या लिखा, कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी यानी पुद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता है, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, ज्ञान को मोक्ष का कारण सिद्ध किया और हेतु दिया क्या, एक द्रव्य स्वभावत्व, एक द्रव्य स्वभाव रूप होने से ज्ञान मोक्ष का कारण है, और भिन्न द्रव्य स्वभाव रूप होने से पुद्गल द्रव्य स्वभाव रूप होने से शुभ कर्म मोक्ष का कारण नहीं, ये सिद्ध किया। और अभी इसमें एक श्लोक और है जो कि 108 नंबर का श्लोक है, जो दोनों श्लोक के सार को अपने में समाहित किए हुए, मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च, और मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात् तन्निषिद्धते। क्या कहा इन्होंने कि वो जो परिणाम है वो कैसा है, मोक्ष हेतु तिरोधानात्, मोक्ष के हेतु का तिरोधान माने नाश करता है, कौन सा भाव नाश करता है, जो बंध भाव है, जो पुण्य भाव है, जो शुभ भाव है, जो जड़ भाव है, वो मोक्ष के हेतु का तिरोधान करता है, मोक्ष के हेतु का नाश करता है। इसलिए क्यों करता है, क्योंकि बंधत्वात् स्वयमेव च, वो जो शुभ कर्म है वो स्वयं ही बंध स्वरूप है, जो स्वयं बंध स्वरूप होगा वो मोक्ष स्वरूप का घात किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए स्वयं बंध स्वरूप होने के कारण वो मोक्ष के हेतु का घात करता है। मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात् तन्निषिद्धते, और अब वो भाव जो शुभ भाव है, वो भाव जो पुण्य भाव है, वो मोक्ष हेतु का, मोक्ष के हेतु का तिरोधान करने वाला है, नाश करने वाला है, इसीलिए तो उस भाव को विभावी होने के कारण है वो तन्निषिद्धते, वास्तव में उस भाव का निषेध किया जाता है, यानी शुभ भाव का मोक्ष मार्ग में निषेध है, संसार मार्ग में शुभ भाव होता है और उससे संसार ही होता है, उस शुभ भाव से कभी मुक्ति किसी को मिली नहीं है। किसी भी जाति का शुभ भाव हो, तीर्थंकर प्रकृति का बांधने का जो दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं हो, वे कर्म बंध की कारण है, मुक्ति की कारण नहीं है, बल्कि तीर्थंकर प्रकृति का क्षय हो तब कहीं मोक्ष दशा की प्रकटता हुआ करती है, इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति भी किसी तरह से भी उपादेय नहीं। उसमें जो आत्मा तीर्थंकर प्रकृति के नाम सुन के जिसको अपने में बड़प्पन का अनुभव होता है, उसको उसका मिथ्यात्व नहीं गया, क्यों, इसलिए कि जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जिन भावों से बनती है, 16 कारण भावना के भाव, वे भाव भाव कर्म है, और वो प्रकृति जो बंधी है कारमान वर्गना कर्म रूप तीर्थंकर प्रकृति रूप परिणमी, वो द्रव्य कर्म है, और उसका जब फल आएगा तो जो फल देखने में बाहर आएगा वो 13वें गुण स्थान में आएगा, उससे जो फल हुआ वो नौकर्म कहलाता है। मन कमाल हो गया, जिस भाव से पुण्य बनता है तीर्थंकर का, वो भाव आश्रय भाव है, वो भाव बंध भाव है, वो भाव शुभ भाव है, और जिससे जिस भाव से वो प्रकृति बंधी वो कर्म भाव है, द्रव्य कर्म रूप है, और उसका जब फल आएगा तो वो नो कर्म रूप है, तो उसका फल भी नो कर्म रूप, और वह स्वयं कर्म रूप, और जिन भावों से बंधा वो भाव कर्म रूप, तो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित आत्मा का स्वभाव है, और जब रहित आत्मा का स्वभाव है तो आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है, आत्मा भाव कर्म स्वभावी भी नहीं है, आत्मा द्रव्य कर्म स्वभावी भी नहीं है, और आत्मा नो कर्म स्वभावी भी नहीं है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित आत्मा का स्वभाव है। इसलिए मोक्ष का तिरोधान करने वाला होने से, बंध स्वयं बंध स्वरूप होने से, उस मोक्ष के तिरोधाई भाव बंध भाव को यानी पुण्य भाव को या शुभ भाव को निषेध किया जाता है। हैं, क्यों निषेध किया जाता है? कि मोक्ष का तिरोधाई भाव है, वो मोक्ष को नाश करने वाला भाव है, इस कारण हम उसका निषेध करते। अगर वो मोक्ष का नाश करने वाला नहीं होता तो उसका निषेध करने की जरूरत नहीं होती। ज्ञान स्वभाव मोक्ष का, मोक्ष भाव का माने तिरोधाई भाव नहीं होता, विनाश नहीं करता बल्कि उसकी रचना करता है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया गया। इसलिए मोक्ष मार्ग में एक ज्ञान स्वभाव ही आश्रय करने योग्य है, कर्म स्वभाव आश्रय करने योग्य नहीं है। कर्म स्वभाव द्रव्यांतर है, माने पुद्गल की क्रिया है, क्रिया पुद्गल की है, और उसमें जो भाव होता है शुभ भाव, वो भाव भी जड़ भाव है, क्योंकि पुण्य परिणाम में आते हुए पुण्य परिणाम में अपने को और जिसके पास आया है उसको जानने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन उस आते हुए पुण्य परिणाम को ज्ञान दोनों ही काम कर लेता है। मैं ज्ञान हूँ और ये आने वाला जो शुभ भाव है ये आश्रव है, ये राग है, ये आकुलतामय है, ये उपादेय नहीं है, ये हे है, ये सब ज्ञान निर्णय कर लेता है और अपने से उसको भिन्न जान लेता है। इसलिए जो स्वपर को जानता है वो अपना स्वभाव है, और जिसको स्वपर का ज्ञान नहीं है वो जड़ भाव है। तो पुण्य परिणाम, पुण्य का परिणमन और पुण्य का फल, ये सब जड़ भाव है, और जड़ भाव होने से ये मोक्ष के कारण नहीं है, और मोक्ष का कारण ना होने से उनका निषेध किया गया। ये तीनों गाथाओं का अर्थ हुआ। अभी इनमें पंडित जयचंद जी साहब ने अगर भावार्थ लिखा हो तो उसको भी अपन देखते हैं। उन्होंने तो इसमें कोई अलग से अर्थ नहीं लिखा है, इसमें तो अब इसके बाद में सीधा नई गाथाएं आ रही हैं, और उन गाथाओं में क्या निरूपण किया गया है कि अथ कर्मणो मोक्ष हेतु तिरोधान करणम साधयति। अब इन तीन गाथाओं में 157 गाथा, 158 गाथा, 159 गाथा, इन तीनों गाथाओं में मोक्ष के हेतु का तिरोधान माने नाश करने वाला कर्म होता है ये बात सिद्ध करते हैं। और मोक्ष के हेतु होते हैं दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शर्त, और ये जो तुम्हारे से कर्म है वो सम्यक दर्शन का भी घातक है, वो कर्म सम्यक ज्ञान का भी घातक है, वो कर्म सम्यक शर्त का भी घातक है। इस तरह से आत्मा के जो मोक्ष हेतु हैं उनका नाश करने वाला होने से उसको ये सिद्ध आगम से कर रहे हैं तो वो बंध का कारण है, बंध के कारण को उपादेय नहीं माना जा सकता, ये ही माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पढ़ते हैं गाथा, और गाथा में कुछ मर्म बहुत बढ़िया आया है, और इसमें मैं एक चीज और आपको संकेत करूंगा, वो ये करूंगा कि पहले जो अपन को एक पूर्व में गाथा और उसकी टीका जब पढ़ी थी तो शंका हो गई थी कि अगर श्रद्धान भी ज्ञान रूप है, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान रूप है, और चारित्र भी ज्ञान रूप है, तब तो चारित्र और श्रद्धान का अपना निजी स्वरूप क्या रहा, ऐसी शंका हो गई थी। लेकिन इसमें इन गाथाओं में उस शंका का निवारण किया है। देखिए पढ़ते हैं, बत्थस्य सेद भाव जहना से मल मेलना सतो मिच्छत्तम आलोच्छन्नम तहसम्मत्तम खुणा दब्बम। ये तीन गाथाएं हैं। पहली गाथा तीनों में दृष्टांत तो एक ही दिया है, इसलिए प्रत्येक गाथा की पहली पंक्ति सेम है, वही बस बिल्कुल बिल्कुल वही पंक्ति है, केवल एक एक शब्द का अंतर डाला है। एक में श्रद्धान का लिया है, दूसरे में ज्ञान का लिया है, तीसरे में चार्त का लिया है। तो ऊपर वाले में ये लिया, वत्थस्य सेद भावो, वस्त्र का जो श्वेत भाव है, जह नाशेदि मल मेलना सत्तो, जिस प्रकार नाश को प्राप्त होता है कैसे मेल के मिल जाने से, वस्त्र का सफेदी, वस्त्र का श्वेत भाव नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मिच्छत मलोच्छन्नम, मिथ्यात रूपी मैल से जब श्रद्धा कहना चाहिए मलिन होती है, तो उससे सम्मत्तम खुणादब्बम, सम्यक्त को भी मलिन जानना चाहिए। तो सम्यक्त का प्रतिबंधक कर्म हुआ कौन, ये मिथ्यात रूप मल, यानी मिथ्यात भाव कर्म का कहना चाहिए सम्यक्त का प्रतिबंधक हुआ, तो सम्यक दर्शन न्यारा हो गया, क्योंकि उसका कारण न्यारा है, उसको ढकने वाला, आवृत करने वाला, तिरोधान करने वाला कारण अलग है। वो कौन सा है कारण उसका, मिथ्यात्व उसका कारण है। और वो क्या करता है मिथ्यात्व, सम्यक्त को मलिन करता है। कैसे करता है, जैसे वस्त्र को मैल मलिन कर देता है, ऐसे सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व रूपी मैल उसमें लिप्त हो करके उसे मलिन कर देता है। दूसरी गाथा में सम्यक ज्ञान की बात कही और दृष्टांत तो वही दिया, बत्थस सेद भावो जह नाशेदी मल मेलना सत्तो, जैसे वस्त्र का सफेद भाव को और मल के द्वारा, मल के मिल जाने से उसका सफेद भाव नाश को प्राप्त होता है, अन्नान मलोच्छन्नम, इसी तरह नानम माने ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान, उसको वो अज्ञान रूपी मैल से वो ज्ञान भी नाश को प्राप्त होता है। हो दीनादव्यम, इसी तरह ज्ञान मलिन होता है और नाश को प्राप्त होता है कैसे, अज्ञान रूपी मैल से। तो ये अज्ञान मैल जो है ये अलग जाति का कर्म हो गया और इससे ज्ञान की सिद्धि हुई। पहले जो मिथ्यात्व मैल था और वो सम्यक्त का नाश करने वाला था, तो वो सम्यक्त गुण का परिणमन अलग था, ये सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण का परिणमन अलग है। और अब चारित्र गुण के विषय में भी दृष्टांत वही, वत्थस्य सेद भावो जह नाशेदि मल मेलना सत्तो कषाय मलोच्छन्नम तह चारित्रम पीणादव्यम, कषाय से कषाय रूपी मल के मिलने से चारित्र उसी तरह से नाश को प्राप्त होता है, जैसे सफेद वस्त्र पर मैल मिल जावे तो वो नाश को प्राप्त हो जाता, उसकी सफेदी नष्ट हो जाती। बस तीनों दृष्टांत में कपड़ा जैसे मैल के निमित्त से नष्ट होता है, ऐसे सम्यक दर्शन ख्यात मैल के मिलने से नष्ट होता है, सम्यक ज्ञान अज्ञान मैल के मिलने से नष्ट होता है, और सम्यक चारित्र कषाय मैल के मिलने से नष्ट होता है। ये लिखा, यानी चारित्र का विरोधी कषाय है, ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, और श्रद्धान का विरोधी मिथ्यात्व। इस तरह सिद्ध हुआ, जब तीन कारण हैं तो वे गुण तीन हो गए, एक नहीं रहा, तीन हुए, लेकिन उन गुणों में परिणमन की जो मुख्यता होती है उसमें ज्ञान ही सब काम करता है। श्रद्धा रूप परिणमन भी ज्ञान करता है, जानन रूप परिणमन भी ज्ञान करता है, और राग के त्याग रूप परिणमन भी ज्ञान करता है। इस कारण से अभेद रूप में एक ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, और भेद रूप में कहो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मुक्ति के कारण है। इस तरह से इस गाथा में ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि मल मिलन लिप्त जो नाश पावे, श्वेत पन ज्यो वस्त्र का, वस्त्र का जो सफेद पना है, सफेदी है, अगर वो मल मिल जाए, उसमें लिप्त हो जाए, तो वो नाश को प्राप्त होता है, उसकी सफेदी का स्वभाव नष्ट हो जाता है। इसी तरह मिथ्यात्व तो मल के लेप से सम्यक्त त्यों ही जानना, सम्यक दर्शन भी इसी प्रकार से मिथ्यात्व तो मैल के मिल जाने से, विपरीत अभिनिवेश हो जाने से सम्यक्त भी मलिन हो जाता है, सम्यक की नाश को प्राप्त होता है। मल मिलन लिप्त जो नाश पावे, श्वेत पन ज्यो वस्त्र का, अज्ञान मल के लेप से सद ज्ञान त्यों ही जानना। लो, सम्यक ज्ञान अज्ञान रूपी मैल के लेप से नष्ट होता है। जैसे मैल के मिल जाने से सफेद वस्त्र का सफेद पना नाश होता है, इसी तरह सद ज्ञान में अज्ञान मैल मिल जाए तो सद ज्ञान का नाश हो जाता है। और आगे तीसरी गाथा का अनुवाद में ये लिखा, मल मिलन लिप्त जो नाश पावे, श्वेत पन ज्यो वस्त्र का। जैसे वस्त्र का सफेद पना मैल के मिलने से, मैल में लिप्त होने से नाश को प्राप्त होता है। चारित्र पावे नाश लिप्त कसाय मल से जानना। इसी तरह से कसाय रूपी मैल के मिलने से चारित्र का नाश होता है। इसका ये भी अर्थ निकला कि अगर किसी को सम्यक्त की को निर्मल रखना है तो मिथ्यात्व से बचना होगा, और मिथ्यात्व से बचना है तो मिथ्यात्व के कारणों को समझना होगा। सात तत्व का हेगे उपाधे लगा के समझना होगा, उसमें स्वपर का भेद ज्ञान करना होगा, उसमें पर का विकल्प छोड़ के स्वामे रमण करना होगा, तब कहीं निर्दोष सम्यक प्रकट होगा। और इसी तरह किसी को सम्यक ज्ञान प्रकट करना है और उसमें दोष नहीं लगाना है तो जो अज्ञान रूपी मैल है उससे दूर रहना होगा। और अज्ञान का मैल काय से मिटता है? अज्ञान का मैल तत्वाभ्यास से मिटता है, और तत्वाभ्यास के साथ में जब प्रतीति सम्यक हो जाती है तो अज्ञान मैल का अभाव हो जाता है और सम्यक ज्ञान की प्रगटता हो जाती है। और जो कषाय मैल है, मल मिलन लिप्त जो नाश पावे, श्वेत पन ज्यो वस्त्र का, चारित्र पावे नाश लिप्त कषाय मल से जानना। और जैसे सफेदी मल के मिलने से, लिप्त होने से नाश हो जाती है वस्त्र की, ऐसे चारित्र में कषाय रूपी मैल मिल जावे तो कषाय से उसका नाश होता है। ये तीनों में तीनों बातें कह दी, एक में मिथ्यात्व को मैल कहा, दूसरे में अज्ञान को मैल कहा, तीसरे में कषाय को मैल कहा। इसका अर्थ ये है कि मिथ्यात्व अगर नाश करना है तो देव सात गुरु का निर्णय यथार्थ करना होगा। सबका निर्णय सब नहीं चलेगा तो देव सात गुरु को भी नमस्कार कर लो सच्चे, और कुगुरु कुदेव कुधर्म को भी नमस्कार कर लो, रागी देवताओं को भी मान लो, भीतरागी को मान लो, इसमें तो सम्यक्त का नाश होगा। और सात तत्व के विषय में भी अगर विपरीत श्रद्धान हुआ, उपादेय को हे मान लिया और हे को उपादेय मान लिया और गे को गे नहीं जाना है, तो निश्चित है तो वह तत्व ज्ञान भी मिथ्यात्व का कारण बनता है। और अज्ञान क्या है? कि अज्ञान में भी वस्तु जो ज्ञान है वो सुपर प्रकाशक है। वो सुपर प्रकाशक ज्ञान को कोई सर्वथा स्वप्रकाशक माने अथवा कोई उसको सर्वथा पर प्रकाशक माने, ये ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन है, ये समय ज्ञान रूप परिणमन नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वभाव का मल दूर करना है तो ज्ञान के सुपर प्रकाशक स्वभाव का भी निर्णय करना होगा। सुपर प्रकाशक स्वभाव का निर्णय होते साथ ज्ञान का मैल जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है, उसको समय ज्ञान पाना प्राप्त होता है। और जो कषाय मैल है, अभी लोगों को ये खबर ही नहीं कि चारित्र किस वस्तु का नाम, वो तो समझते कुछ आचरण कर लो, अशुभ आचरण से छोड़ के शुभ आचरण करो उसको चारित्र मानते, और तो ठीक है, इतनी तक भूल करते हैं कि कुदेवों के निमित्त से कुछ करते हैं उसको भी वे चारित्र मानते हैं, जो कि प्रगट मिथ्या चारित्र है, और प्रगट मिथ्या चारित्र को सम्यक चारित्र मानते हैं, और शुभ भाव रूप परिणमन को भी वे सम्यक चारित्र मानते हैं। जबकि सम्यक चारित्र की परिभाषा तो आचार्यों ने ये दी कि कषाय का अभाव हो, राग द्वेष का त्याग हो, उसका नाम चारित्र है। राग द्वेष का त्याग ना हो तो चारित्र होते ही नहीं। इस तरह से तीनों का खुलासा किया, सम्यक्त का विपरीत का पना काय से होता है, ज्ञान का विपरीत पना काय से होता है, और चारित्र का विपरीत पना काय से होता है। तीनों के नाम बताए, एक मिथ्यात्व मैल है, दूसरा अज्ञान मैल है, और तीसरा कषाय मैल है। इनसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मलिन होते। अगर अपने को मोक्ष की आराधना करनी है तो तीनों को निर्मल बनाना होगा। श्रद्धान भी निर्मल चाहिए, ज्ञान भी निर्मल चाहिए, और कषाय मिटकर चारित्र भी निर्मल चाहिए। इन तीनों की निर्मलता से मोक्ष मार्ग चलता है, और इनमें मलिनता आ जाने से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अब इसका अर्थ भी पढ़ते हैं, देखिए। नीचे गाथाओं का अर्थ लिखा है। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है, नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त होता हुआ लिप्त होता हुआ सम्यक वास्तव में तिरोभूत हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे वस्त्र का सफेद भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त होता हुआ लिप्त होता हुआ ज्ञान भी तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। और जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता है और नाश को प्राप्त होता है, तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल के से व्याप्त होने पर लिप्त होने पर चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये सम्यक दर्शन की मलिनता का कारण, सम्यक ज्ञान की मलिनता का कारण और सम्यक चरित्र की मलिनता का कारण बताया, और अगर उन्हें निर्मल बना के रखना है तो उन कारणों को हटा दीजिए, मिथ्यात्व को हटा दीजिए, सम्यक तो निर्मल हो जाएगा, अज्ञान को हटा दीजिए, ज्ञान निर्मल हो जाएगा, राग द्वेष को हटा दीजिए या कि कषाय को हटा दीजिए, चरित्र निर्मल हो जाएगा। ये निर्मल दर्शन, निर्मल ज्ञान और निर्मल चरित्र से ही मुक्ति होती है, और उनमें अगर दोष लग जाता है तो वो दोष मुक्ति नहीं होने देता है। अब जरा इसकी जो टीका है वो बड़ी गंभीर है, टीका अमृत चंद्राचार्य की जो टीका आई है उसको अपन देखते हैं। हम पहले उसकी हिंदी टीका देखते हैं और इसी के तुरंत बाद हम उसको संस्कृत की टीका में भी सामने पढ़ के एक एक शब्द का अर्थ कर देंगे। ज्ञान का सम्यक हे उल, एक गजब बात है, पहले जो गाथाएं आई थी वहां उन्होंने ये समझाया था कि श्रद्धान रूप परनमन वो भी ज्ञान का है, अब क्या बोल रहे हैं, सम्यक किसका है, क्या ज्ञान का है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ज्ञान का सम्यक जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, कैसा है ज्ञान का सम्यक, मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह परम भाव, वह प्रभाव स्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जैसे परभाव रूप मैल के मैल से व्याप्त हुआ सफेद वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाव उसका तिरोभूत हो जाता है, ऐसा सम्यक भी मिथ्यात्व मैल के मिलने से तिरोभूत हो जाता है। और ज्ञान का ज्ञान, पहले तो कहा था श्रद्धान रूप जो परनमन वो ज्ञान का परनमन, फिर कहा था स्वपर को ज्ञानन रूप यानी ज्ञान का ज्ञान रूप जानपना वो सम्यक, वो भी ज्ञान का परनमन है, और फिर कहा था कि कषाय के त्याग रूप जो चारित्र का परनमन है वो भी ज्ञान का ही परनमन है। अब ये कह रहे हैं ज्ञान की तरफ से, ज्ञान का सम्यक, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का चारित्र, माने सम्यक जो है वो ज्ञान का है, ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान भी ज्ञान का है, और चारित्र है वो भी सम्यक ज्ञान, वो भी ज्ञान का ही परिणमन, गजब बात है। चारित्र को कौन मानेगा कि ज्ञान का परिणमन, वे मानते जिनकी दृष्टि में आ जाए कि ज्ञान के परिणमन में राग द्वेष नहीं होते, इसलिए ज्ञान का परिणमन ही चारित्र है, राग द्वेष नहीं होते माने ज्ञान वीतराग स्वभाव होता है, ज्ञान में वीतराग रूप परिणमन का स्वभाव पड़ा हुआ है, ज्ञान में राग द्वेष रूप परिणमन का स्वभाव नहीं है, और राग द्वेष रूप परिणमन जो होता है वो परिणमन चारित्र मोह के उदय में आत्मा के चारित्र गुण में देखा जाता है। सो उसको, उस परिणमन को ज्ञान जानता है लेकिन उस परिणमन का ज्ञान करता नहीं होता। आत्मा में जितने भी विकारी भाव होते हैं वे सारे विकारी भावों को आत्मा ऐसा जानता है कि आगंतुक भाव है, ये परभाव है, ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव है, ये पराश्रित भाव है, ये विभाव हैं, ये हे हैं, ये उपादेय नहीं, ज्ञानी की ऐसी निर्मल श्रद्धान होता है। और आगे ये कहते हैं कि इस तरह से तीनों, यानी तीनों कौन, सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र का तिरोधान करने वाला होने से एक जो कर्म है उसका निषेध किया गया। सम्यक दर्शन का भी तिरोधान किस कर्म ने किया, ये मिथ्यात्व कर्म ने किया, सम्यक ज्ञान का तिरोधान किस कर्म ने किया, अज्ञान कर्म ने किया, और चारित्र का तिरोधान किसने किया, कषाय कर्म ने किया। वो तीनों कर्म हैं और तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश करने वाले, इस कारण से ये इसका निषेध किया है जनागम ने। अज्ञानियों को खबर नहीं, वे पुण्य में धर्म मानते हैं, पुण्य को मोक्ष का कारण मानते हैं। यहाँ कुंद कुंद जैसे महान आचार्य जिनको लोग कहते हैं मंगलम कुंद कुंदाद्यो, गणधर के बाद जिन्हें मंगलकारी आप याद करते हो, उनकी बात क्या है वो सुनते नहीं हो, उसका अर्थ क्या है वो जानते नहीं हो, उसका भाव क्या है उसे तुम्हें रुचता नहीं है। इसे पता चलता है मोह का चक्कर है, मोह का उदय है। इसलिए ज्ञानियों का जो बताया गया ज्ञान, जो जो भेद ज्ञान है, जो वस्तु का स्वरूप है, वो जिन्हें न रुचे जानो कि उनके मोह का उदय है, दर्शन मोह का उदय है। वो जिन्हें नहीं समझ में आता है जानो अज्ञान का उदय है। और उस रूप जो प्रणमन नहीं करना चाहते हैं, राग द्वेष रूप ही प्रणमन करते हैं, जानो उनके कषाय का उदय ऐसा है। इसलिए ये तीनों कर्मों का, तीनों माने मिथ्यात्व कर्म, अज्ञान कर्म और कषाय कर्म, इन तीनों कर्मों का निषेध किया गया है। अब हेतु बता दिया निषेध का, तो उनको निषिद्ध मानो, उनको उपादेय मत मानो। देखो आचरण करना अलग बात है, पाप से बचने के लिए शुभ का ही आचरण करना पड़ता है, लेकिन शुभ का आचरण करना पड़ता है। ज्ञानी शुभ को उपादेय नहीं मानता है, और इसलिए जो शुभ को उपादेय मानते हैं उनके सम्यक तो नहीं होता है, और जिनके सम्यक तो होता है वे शुभ को हे मानते हैं। भले आचरण में राग से बचने के लिए, तीव्र राग से बचने के लिए, अथवा कि कहना चाहिए पापानुराग से बचने के लिए, वे पुण्यानुराग वाला ही आचरण करते हैं, तथापि उस आचरण में धर्म नहीं मानते। लोक में भी ये देखा जाता है, कोई व्यक्ति के पास पैसे नहीं है धंधा चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट से लोन लेता है, उधार लेता है, लेकिन गवर्नमेंट के पैसे को अपना पैसा नहीं मानता है, गवर्नमेंट के पैसे को पर का पैसा मानता है, उपादेय नहीं मानता है, हे मानता है। लेकिन क्या करे, पैसा निजी है नहीं और धंधा चलाना जरूरी है, इसलिए वो उधार लेता है या कि बैंक से लोन लेता है। लेकिन लोन लेने वाला अगर ईमानदार है तो उस लोन वाले पैसे को अपना नहीं मान सकता और उसे उपादेय भी नहीं मानेगा, लेकिन लोन के निमित्त से जो उसकी कमाई होगी वो कमाई वाला पैसा अपना मानेगा, ऐसा देखा जाता है। ऐसे यहाँ पर भी जो स्वभाव होते हैं ज्ञानी को, वो पाप से बचने के लिए स्वभाव बुद्धिपूर्वक होते, लेकिन उस स्वभाव में भले प्रवर्तन बुद्धिपूर्वक किया है, लेकिन उसके स्वरूप की जानकारी में कभी पीछे नहीं है। वो जानता है कि ये बंध भाव है, ये वास्तव में भिकारी भाव है, ये विभाव भाव है, ये आगंतुक भाव है, चला जाने वाला भाव है, और आता है तो आत्मा में आकुलता पैदा करने वाला भाव है, और आकुल आत्मा के गुणों का तिरोधान करता है, नाश करता है। इसलिए ये भाव में आत्मबुद्धि रखना या उसकी उपादेय बुद्धि रखना या उसको धर्म का कारण मानना, ये बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को शीघ्र छोड़ना चाहिए और ज्ञान भाव धारण करना चाहिए। इस तरह से ये तीनों जो गाथाएं हुई उनकी अपन ने ये हिंदी टीका पढ़ी। अभी थोड़ा आपका ध्यान एक बार और इसकी संस्कृत टीका पर देते हैं। देखो कितनी संस्कृत भी कितनी सदी हुई, सरल छोटे छोटे वाक्यों में लिखी है अमृत चंद्राचार्य ने। ज्ञानस्य सम्यक्त्वम्, देखो क्या क्लियर लिखा, किसका सम्यक्त, ज्ञान का सम्यक्त। ज्ञानस्य सम्यक्त्वम् यानी ज्ञान का जो सम्यक्त्व है मोक्ष हेतु स्वभाव, वो कौन सा स्वभाव है, मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। यानी ज्ञान का सम्यक्त्व है वो मोक्ष का कारण रूप स्वभाव। ज्ञान का सम्यक्त्व का अर्थ क्या लेना, ज्ञान का सम्यक्त्व क्यों कहा, क्योंकि सम्यक्त्व रूप जो श्रद्धा है वो तब पैदा होती है जब अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करता है। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक श्रद्धा पैदा होती है, तो जिसके आश्रय से वो श्रद्धा पैदा हुई आयोजन में, वो श्रद्धा उस ज्ञायक की कहलाई, किसकी कहलाई, ज्ञायक की, और ज्ञायक का लक्षण ज्ञान है, इसलिए वो श्रद्धा किसकी हुई, ज्ञान की हुई, ऐसा है। आगे क्या कहा कि इस तरह से मोक्ष हेतु स्वभाव और प्रभावेन मिथ्यात्व नामना, जो मिथ्यात्व नाम का प्रभाव है यहाँ तो ज्ञान का सम्यक वो मोक्ष का हेतु स्वभाव है एक हा। और आगे क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व नामना प्रभावेन, मिथ्यात्व नाम का जो प्रभाव है वो कर्म मलेन, वो कर्म रूपी मैल से अवच्छिन्नत्वात्, कर्म मैल से मलिन होने के कारण वो वास्तव में तिरोधीयते, माने वो तिरोभूत करता है। किसको तिरोभूत करता है, अपने आत्मा के स्वभाव को, श्रद्धा स्वभाव को तिरोधाई करता है। पर भावभूत मलच्छन्न प्रभाव किस तरह से करता है वो तिरोभूत, किस तरह से वो नाश करता है श्रद्धान स्वभाव को, जिस प्रकार परभावभूत प्रभाव रूप में मलावच्छन्न मल से लिप्त श्वेत वस्त्र स्वभाव, वस्त्र का स्वभाव तो श्वेत है, सफेद है, लेकिन वो मल से लिप्त हो गया है। तो मल से लिप्त होने पर उसका स्वभाव भूत जो श्वेत स्वभाव है वो मलिन हो जाता है। तो उसी की तरह सम्यक स्वभाव भी मिथ्यात् रूप मैल से मलिन हो जाता है। फिर आगे लिख रहे हैं ज्ञानस्य ज्ञानम, वहां लिखा था ज्ञानस्य सम्यक्त्वम, ज्ञान का सम्यक। अब ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान क्या है, ज्ञान का सम्यक तो मैंने बता दिया कि जिसके आश्रय से श्रद्धा जन्मती है वो ज्ञायक है, और ज्ञायक ज्ञानमय है, इसलिए वो श्रद्धा किसकी, ज्ञान की। अब सम्यक ज्ञान किसका, के ज्ञान का, क्यों, क्योंकि सम्यक ज्ञान का भी जन्म ज्ञायक स्वभाव के जानने में, ये मैं स्वा हूं और बाकी सब पर है, ऐसा जो स्वपर का ज्ञान करता है द्रव्य स्वभाव से मैं ज्ञायक मात्र हूं, बाकी सब ज्ञायक मात्र न होने से वो मेरा द्रव्य स्वभाव नहीं है, उसको पर स्वभाव जानता है, ऐसा जानने वाला ज्ञायक में एकत्व बुद्धि करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और इस असम्यक ज्ञान है और ज्ञायक है स्वयं ज्ञान रूप है, इसलिए सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान का ज्ञान ये लिखा है। किसका ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञानस्य ज्ञानम, वो है काय का हेतु, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञायक स्वभाव का जो ज्ञान है वो काय का हेतु, मोक्ष हेतु, मोक्ष हेतु स्वभाव, और वो मोक्ष हेतु स्वभाव भी काय से नाश होता है। तो लिखा परभावेन अज्ञान नामना, परभाव रूप जो अज्ञान नाम का कर्म मल, क्या है वो, कर्म मल है, उस कर्म मलेन, उस कर्म मल से अवच्छिन्नत्वात् माने लिप्त हो जाने के कारण वो जो निर्मल स्वभाव है आत्मा का ज्ञान का वो तिरोधीय थे, वो नाश को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है ना। दो बातें आ गई अपने सामने, ज्ञानस्य सम्यक्त्वम और ज्ञानस्य ज्ञानम, और अब तीसरी बात आ रही है ज्ञानस्य चारित्रम, ज्ञान का चारित्र, ये भी गजब बात है। ज्ञान का चारित्र क्यों कह रहे हैं, कि ज्ञायक के आश्रय से चारित्र होता है और ज्ञायक ज्ञानमय होता है, इसलिए चारित्र को ज्ञान का चारित्र कहते हैं। ये ज्ञानमय होने के कारण ज्ञान कहो कि ज्ञायक कहो एक ही बात है, और इसलिए उसके आश्रय से प्रकट होने वाला जो चारित्र है वो ज्ञान का चारित्र कहलाता है, समझ में आया ना। इसलिए ज्ञान का जो कहना चाहिए चारित्र है वो मोक्ष हेतु स्वभाव, वो मोक्ष का स्वभाव है, मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। और प्रभावेन कषाय नामना, और प्रभाव रूप जो कषाय नाम का कर्म मलेन, कर्म मल से अगर वो आच्छन्नत्वात्, आच्छन्न माने ढक जाता है या उससे मिल जाता है, तो वो उसका जो ज्ञान का चारित्र का जो निर्मल स्वभाव है तिरोधीयते, वो त्रस्त माने नाश को प्राप्त होता है, तिरोधीयते माने नाश को प्राप्त होता है। क्यों होता है, कि प्रभाव भूत मल अवच्छन्नत्व, जैसे प्रभाव रूपी मैल के मिल जाने से श्वेत वस्त्र स्वभाव भूत, श्वेत वस्त्र का जो स्वभाव है वो श्वेत वस्त्र का स्वभाव मलिन हो जाता है, नाश हो जाता है, तिरोधान हो जाता है। इसी तरह ये जो मोक्ष का कारण भूत ज्ञान का चारित्र है वो भी कषाय मैल के मिलने से नाश को प्राप्त होता है। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष में एक लाइन लिखी, अतः, अतो माने अतः, इसलिए मोक्ष हेतु तिरोधान करणात् कर्मम प्रतिषिद्ध, कर्म प्रतिषिद्धम, यानी मोक्ष हेतु का नाश करने वाले होने से कर्म को निषेध किया। अब कर्म में किस किस को लेना, जो मिथ्यात्व कर्म है वो भी कर्म है, जो अज्ञान कर्म है वो भी कर्म है, और जो कसाय कर्म है वो भी करना, ये तीनों का निषेध किया गया है, ताकि सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल वर्ते, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से वर्ते, और उनको बोलेंगे ज्ञान का सम्यक, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का चारित्र। ऐसा इस तरह से ये मोक्ष के त्रोदायी कारण होने से समस्त कर्म का निषेध किया गया है, और कर्म का निषेध करने से वास्तव में देखा जाए तो स्वभाव का समर्थन किया गया। जब हम एक का निषेध करते हैं, विरोधी का निषेध करते हैं, तो अविरोधी स्वभाव का समर्थन होता। तो हमने मिथ्यात्व विरोधी स्वभाव जानकर उसका निषेध किया, तो समर्थन किसका हो गया? जो अविरोधी स्वभाव सम्यक है उसका समर्थन हो गया। जब हमने अज्ञान जो विरोधी स्वभाव है उसका निषेध किया, तो किसका समर्थन हुआ? कि जो सम्यक ज्ञान या ज्ञान स्वभाव है उसका समर्थन हो गया। और जब हमने कसाय का निषेध किया, तो वो कसाय के निषेध करने से जो चारित्र वीतरागी स्वभाव चारित्र है, ज्ञान का ही स्वभाव है, उसका समर्थन हो गया। इसलिए पूरी गाथाओं में, तीनों गाथाओं में तीन प्रकार के कर्म का निषेध किया, और तीन प्रकार के सम्यक्त भाव हैं, सम्यक्त भाव, ज्ञान भाव और चारित्र भाव, ये तीनों को अपना स्वभाव बताया। स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग होता है, कर्म के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जीवन में मोक्ष मार्ग के लिए कर्म निषिद्ध है और ज्ञान ही उपादेय है। इस तरह से ये बात अपनी पूरी हुई। और हमें उससे मतलब अपन ने देख करके चालू किया था, जब 5 मिनट आगे बढ़ गई थी तब बंद किया। अब हमारे पास 12-13 मिनट बाकी हैं, तो जो भी जिनको शंकाएं हों, जो चर्चा करनी हो, वो प्रश्न करें।
पंडित जी, यहाँ भी
पंडित जी, एक मिनट, रसिक भाई ना, रसिक भाई बोल
ना, बोलो अच्छा। बोलो रजनी भाई।
ओके, जहाँ जहाँ यहाँ शुभ कर्म की बात की है, और जो शुभ कर्म को पुद्गल स्वाभाविक कहा है, जैसे कि 156 गाथा के भावार्थ में पुद्गल शुभ कर्म पुद्गल स्वाभाविक है और मोक्ष का कारण नहीं होता है, तो शुभ कर्म माने भाव कर्म की ही बात है, बराबर?
हाँ, देखो शुभ कर्म में दोनों नहीं, तीनों कर्म की बात है। ऐसा एक तो जो परिणाम रूप होता है, जिससे शुभ बंध स्वाश्रव होता है, वो भी जड़ है, क्योंकि वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला नहीं है, इसलिए जड़ है। और जो द्रव्य कर्म होता है, वो तो पुद्गल प्रगट पुद्गल रूप है, उसमें तो गुण पाए जाते हैं पुद्गल के, स्पर्श रसगंध वर्ण भी उसमें पाया जाता है, वो भी जड़ है। और उससे जो फल मिलते हैं नो कर्म रूप, वे भी जड़ है। इसलिए नो कर्म रूप भी जड़ है पुद्गल, द्रव्य कर्म रूप पुद्गल भी जड़ है, और जो भाव कर्म रूप पुद्गल है, वो भले चेतन की सत्ता में होता है, लेकिन चेतन जैसे स्वपर को नहीं जानता है, इसलिए वो भी जड़ है।
इसी तरह से मिथ्यात्व कर्म, अज्ञान कर्म और कषाय कर्म, ये तीनों कर्मों में तीनों बात तीन लेना, बराबर? मिथ्यात्व भाव कर्म, मिथ्यात्व द्रव्य कर्म और मिथ्यात्व नौ कर्म।
हाँ, देखो ऐसा, इनमें अपने आपकी जो पहले कभी शंका थी कि ये ज्ञान का कहना चाहिए श्रद्धान रूप ज्ञान का परिणमन, ऐसा कहने में तीनों में ज्ञान ज्ञान कहने में तो दो गुणों का अभाव हो जाएगा, यानी श्रद्धा का और चारित्र का, ये अपना एक शंका थी। हालांकि उसका समाधान किया था, लेकिन इसमें समाधान आ गया कि तीन कारण बताए हैं, श्रद्धान का बाधक मिथ्यात्व कारण बताया है, अज्ञान ज्ञान का बाधक अज्ञान बताया है, और चारित्र का बाधक कषाय बताई है। जब तीन हेतु हैं तो वे गुण भी एक नहीं है, वो तीन है, अन्यथा एक ही हेतु से तीनों को विपरीत परिणमन बता देते, पर एक से नहीं बताया। एक में सम्यक में बताया विपरीत परिणमन का कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और तुम्हारे सम्यक ज्ञान में विपरीत परिणमन का कारण बताया अज्ञान, और चारित्र गुण में परिणमन विपरीत परिणमन का कारण बताया कषाय। इससे सिद्ध हुआ कि जब हेतु तीन हैं तो भी गुण भी तीन हैं, एक नहीं है। फिर ये बात जब एक है तो तीनों को एक ज्ञान में गर्भित कैसे किया, तो एक ज्ञान में गर्वित करने का कारण ये है कि वो जो सम्यक प्रगटता है वो ज्ञायक के आश्रय से प्रगटता है, उस ज्ञायक का लक्षण ज्ञान है, इसलिए वो सम्यक दर्शन ज्ञान का सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक ज्ञान प्रगटता है वो भी उस ज्ञायक के जानने से, ज्ञायक को स्व जाने बाकी सबको पर जाने, उसके जानने से वो सम्यक ज्ञान प्रगटता है। और वह सम्यक ज्ञान, वह जो जिसके आश्रय से वो सम्यक ज्ञान प्रगटा, वो आश्रय वाला पदार्थ का लक्षण ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान का ज्ञान कहलाता है। और चारित्र भी उस ज्ञायक स्वभाव के ही आश्रय से निर्विकल्प चारित्र प्रकट होता है, और जब निर्विकल्प दशा होती है तो कषाय का अभाव होता है, इसलिए वो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेना ही चारित्र उत्पत्ति का कारण होने से ज्ञायक स्वभाव का लक्षण ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का चारित्र कहने में आया। और तीनों में ज्ञान ही प्रमुख रहा बताने में, लेकिन अभिप्राय में श्रद्धा अलग चीज है, अज्ञान अलग चीज है, और राग द्वेष अलग चीज है, और इसलिए भी तीनों भाव भी न्यारे।
बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंडित जी, जय जिनेन्द्र
भाई, थोड़ा सा उसमें समाधान हो रहा है कि नहीं?
हाँ, हो रहा है। एक बात और भी थी, जब भी अज्ञान कर्म की बात करें तो वहाँ औदयिक अज्ञान की बात सोचना कि दूसरा कुछ?
क्या कहा?
अज्ञान, अज्ञान द्रव्य कर्म की, जब भी अज्ञान की बात करें, अज्ञान कर्म की, तो जो द्रव्य कर्म होगा वो अपने औदयिक अज्ञान की बात है कि दूसरी कोई बात है?
औदयिक भाव को मोक्ष मार्ग में अज्ञान नहीं कहते। क्या कहा? कोई भी गुण स्थान का औदयिक भाव अज्ञान नहीं है, वो तो छायब समय की दशा है जीव की। अज्ञान तो कहते हैं जहाँ मिथ्या दर्शन के साथ में ज्ञान वर्तता है, वहाँ सारा ज्ञान अज्ञान कहलाता है।
बराबर,
इसलिए वहाँ पर छायोपशम ज्ञान नहीं लेने का, नहीं तो बार में गुणस्थान वर्ती के भी अज्ञान भाव चलता है छायोपशम भाव चलने से, तो बार में गुणस्थान वर्ती का ज्ञान भी अज्ञान नाम पाएगा। लेकिन यहाँ तो चौथे गुणस्थान वर्ती के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, अज्ञान नहीं कहते।
बहुत बढ़िया
पंडित।
हाँ,
जो मिथ्यात्व कर्म, तो वो दर्शनावरण कर्म आएगा ने, और जो ज्ञान नामक कर्म है वो ज्ञानावरण आएगा, और चारित्र वो मोहनीय कर्म आएगा ने।
हाँ, मोहनीय कर्म क्या है? जिसको ये कहा ना मिथ्यात्व, वो सम्यक, सम्यक गुण का जो परिणमन, सम्यक का जो परिणमन है वो श्रद्धा गुण का परिणमन है भाईजन में, और ज्ञान में जो सम्यक ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञान गुण का परिणमन है, और उस परिणमन में जो अपन ने सम्यक ज्ञान को परिणमन कहा है, तो सम्यक ज्ञान रूप जो ज्ञान गुण का परिणमन है वो वास्तव में देखा जाए तो वो कोई प्रभाव रूप नहीं है, स्वभाव का ही परिणमन है। और उसमें आपकी जो शंका है, क्या है आपकी बारीक शंका इसमें, एक मिनट बताएं फिर से।
मिथ्यात्व नाम कर्म है वो तो ये है ना दर्शनावरण कर्म?
नहीं, दर्शनावरण से मिथ्यात्व नहीं होता है, मिथ्यात्व तो दर्शन मोहिनी से होता है। दर्शन मोहिनी कर्म अलग है, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी से भी मिथ्यात्व नहीं होता है, मिथ्यात्व का कारण दर्शन मोहिनी है। दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इनमें कोई भी जो जो प्रकृतियां जो हैं वे मिथ्या सम्यक में दोष पैदा करने वाली होती हैं, और कोई सम्यक को विपरीत परिणाम देती, उसमें सम्यक प्रकृति मात्र दोष पैदा करती है, और मिश्र प्रकृति और तुम्हारे से मिथ्यात्व प्रकृति ये श्रद्धान को विपरीत करती हैं, अथवा मिश्र श्रद्धान को बताती है। तो इसलिए दर्शन मोह का यहाँ प्रकरण नहीं है। जब उपयोग का प्रकरण चलता है तब दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, वहाँ दर्शन का प्रकरण लेना चाहिए। जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण चलता है तो वहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना चाहिए, और श्रद्धा चार, श्रद्धा गुण रूप जो परिणमन है, उसका गुण का जो परिणमन है उसे ही ग्रहण करना, और वो श्रद्धा दर्शन मोह उसका बाधक गुण होता है, दर्शनीय कर्म दर्शनावरणी कर्म नहीं उसका बाधक होता।
पंडित जी फिर एक दफे बताएंगे? ये जो अभी लास्ट बताया ना आपने ऊपर, एक दफे वापिस बताएंगे?
एक बार फिर से बता दें, अभी को ऐसा है कि जब प्रकरण उपयोग का चले तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसा जानना, वहाँ उपयोग में ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, तो दर्शन पूर्वक है तो दर्शन में छोपसम में जो निमित्त बनता है वो दर्शनावरणी कर्म बनता है। कौन बनता है? दर्शनावरणी। और जब दर्शन शब्द का प्रयोग मोक्ष मार्ग में किया जाए तो वहाँ दर्शन का अर्थ दर्शनावरणी कर्म के उदय से होने वाला दर्शनोपयोग नहीं है, वहाँ दर्शन का अर्थ प्रतीति श्रद्धान है, और इसलिए मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ सम्यक्त रूप में होता है, उस सम्यक्त को ही दर्शन कहते हैं, उसी का नाम सम्यक दर्शन होता है, और उसका जो बाधक कर्म है वो दर्शन मोहिनी है, वो दर्शनावरणी नहीं है, ये मैंने कहा।
बहुत अच्छा
समझा है ना?
तो पंडित जी, ज्ञान को ऐसा कर बोल सकते हैं कि स्वपर का विवेक ना होवे उसको ज्ञान?
देखो ऐसा है, स्वपर का विवेक नहीं होना भी कब तक चलता है? जब तक स्वपर की प्रतीति ना हो तब तक ज्ञान को स्वपर का विवेक नहीं। क्या कहा? प्रतीति हुई तो सम्यक दर्शन के साथ उसका नाम सम्यक ज्ञान पड़ता है।
हाँ।
तो स्वपर का विवेक का अर्थ एक प्रतीति आनी चाहिए, स्व की स्वरूप, पर की पररूप, तब वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में आएगा। ऐसा
वही तभी सच्चा विवेक हुआ ना।
हाँ, तब ऐसा है।
हाँ। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं?
हाँ
ले।
पंडित जी, ना मैंने पहले पूछा ना, जैसे मिथ्यात्व मोहनी की बात अभी निकली, उसके बाद तभी जो ज्ञान की बात थी, तो ज्ञान में उन्होंने पूछा कि ज्ञान का जो कर्म द्रव्य कर्म की बात चलती है जब अज्ञान के बारे में, वो ज्ञानावरणी कर्म है कि क्या है, ऐसा पूछा था उन्होंने।
सुनिए सुनिए, उसमें भी मैंने बताया कि ज्ञानावरणी कर्म नहीं लेना है, जहाँ यहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात चल रही है, यहाँ क्षयोपशम जनित अज्ञान की बात नहीं है। क्षयोपशम जनित अज्ञान में अज्ञान की कीमत मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं है। क्षयोपशमित ज्ञान में जितना अंश भी अज्ञान भाव रूप परिणम रहा है वो मोक्ष मार्ग का बाधक नहीं होता। मोक्ष मार्ग का बाधक तो वो अज्ञान होता है जो मिथ्या दर्शन के साथ में वर्त रहा है, बस ये है। और उनमें ये अंतर लेना, वो जो बचा हुआ अज्ञान है, छायव समय का ज्ञान बारहवें गुण स्थान तक होता है, हैं, लेकिन बारहवें गुण स्थान में अज्ञान भाव नहीं होता, वो अज्ञान भाव नहीं होता, छायव समय अज्ञान तो रहता है उतना, क्यों, तब तो छायव संभाव है, छायक हो जाएगा तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा, लेकिन वो अज्ञान मोक्ष मार्ग में तत्व निर्णय में जो सम्यक ज्ञान जिसका नाम है वो नहीं है। हाँ, ऐसा वो अलग चीज हो गया। और यूं कहना चाहिए कि वो भी बंध का कारण नहीं होता है। कौन? जो अज्ञान है ना, छायोपशमिक अज्ञान, वो बंध का कारण नहीं होता है, और छायोपशमिक ज्ञान भी बंध का कारण नहीं होता है। बंध का कारण तो मिथ्या ज्ञान होता है जो मिथ्या दर्शन सहित वर्तता है, वो बंध का कारण होता है।
पंडित जी।
हाँ जी।
एक सिंपल क्वेश्चन कि जो जीव के तीन भाव बताइए, मिथ्यात्वमल, अज्ञानमल और कसाईमल, ठीक?
हाँ, कसाईमल।
ये जीव की पर्याय के भाव बताइए, मतलब अज्ञान मिथ्यात्व भाव विपरीत परिणमन अश्रद्धा और अज्ञान और
हाँ,
और हाँ, मिथ्या चारित्र, तो उस वक्त हम क्या कर्म के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय और चारित्र मोहनीय कर्म का उदय ऐसा हम ले सकते हैं? अगर लेंगे तो हमारी कोई गलती नहीं होगी ना?
हाँ, गलती होगी। ऐसा है कि जो दर्शन मोह का उदय है वो तो सही है, वो मिथ्या दर्शन का कारण है, लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम मिथ्या है, ज्ञान का क्षयोपशम अज्ञान का कारण नहीं है। अज्ञान का कारण मिथ्या श्रद्धान जो वर्त रहा है वो अज्ञान का कारण होता है, और अगर सम्यक श्रद्धान वर्तता है तो वो सम्यक ज्ञान का कारण होता है। इसलिए
तो उस वक्त ज्ञानावरणीय कर्म ने क्या काम किया निमित्त की अपेक्षा से?
किस कर्म ने?
जिस वक्त जीव की पर्याय में अज्ञान भाव चल रहा है,
हाँ,
वो अज्ञान अपने स्वरूप संबंधी ही है ना।
तो
जो अज्ञान भाव चल रहा है उस वक्त ये कर्म में ज्ञानावरणीय कर्म का जो उदय चल रहा है उसने क्या काम किया?
उसने कुछ नहीं किया। ज्ञानावरणी का छेवसम जीव को जब छेवसम लब्धि होती है तो उसके लिए तत्व निर्णय का, मोक्ष मार्ग में जाने का और सब प्रकार के दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का निर्णय करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए वो छेवसम जन्य जो अज्ञान है उसने मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं किया और उसके कारण मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ। वो तो सम्यक की सत्ता के साथ में रहे तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं होता, और मिथ्यात्व की सत्ता के उदय के साथ में रहे तो वो समय ज्ञान नाम नहीं पाता, अज्ञान नाम पाता है। ऐसी मर्यादा है।
बराबर। तो यहाँ हम चारित्र मोहनीय कर्म को भी इसमें नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते अपने कसाई भाव के निमित्त
को लगा सकते हो। सुन लो जरा ध्यान से, चारित्र मोहनीय कर्म को लगा सकते हो, इसलिए लगा सकते हो कि राग द्वेष रूप परिणमन का जो निमित्त है वो चारित्र मोहिनी कर्म है। अनुपानुबंधी कषाय से लेकर 16 प्रकार की कषाय और 9 प्रकार की 9 कषायें, इन सब का जो मूल कारण है वो चारित्र मोहिनी है। चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां 25 होती हैं और दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां 3 होती हैं और पूरे मोहिनी कर्म की प्रकृतियां 28 होती हैं।
बराबर।
इसलिए उसको कषाय के होने में ये तुम्हारे से अचारित्र होने में कषाय को ही कारण मानना और वो कषाय चारित्र मोह है।
राइट राइट।
हाँ, अभी 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 हमारा टाइम हो रहा है तो हम अभी चिन्वाणी स्तुति लेंगे। हिना बेन।
हाँ जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
चैचिनेन्द्र, कल हम वापस 4 बजे मिलेंगे
जी।
सब अपना नवकर्ता स्मरण कर लेना।
चैचिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र पंडित जी, आप कहाँ हैं?